ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद में प्रस्तुत। नेपाल की अर्थव्यवस्था के 3.85% विस्तार का अनुमान। देश के आर्थिक और सामाजिक सूचकों में सुधार हुआ है, अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले का कथन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेनजी आंदोलन संबंधी जांच प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के लिए सरकार को भेजा पत्र। और भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद में पेश किया है। संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की आज अलग अलग बैठकों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने बताया कि चालू आर्थिक वर्ष में नेपाल की अर्थव्यवस्था के 3.85% की दर से विस्तार होने का अनुमान है। अर्थमंत्री डॉ वागले ने कहा कि देश के आर्थिक और सामाजिक सूचकों में सुधार हुआ है तथा फागुन महीने तक संघीय राजस्व में 3.2% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि चालू आर्थिक वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था का आकार 66 खरब रुपए और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1,535 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अर्थमंत्री डॉ वागले ने जानकारी दी कि चालू आर्थिक वर्ष के फागुन महीने तक संघीय राजस्व 3.2% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि संघीय खर्च में 10.4% की वृद्धि हुई है, लेकिन पूंजीगत खर्च में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका है। इस अवधि में सरकार ने आंतरिक और बाह्य ऋण मिलाकर 3 खरब सार्वजनिक ऋण परिचालन किया है। बैठक में उन्होंने बताया कि फागुन तक सरकार पर बकाया कुल सार्वजनिक ऋण 78 अरब रुपए रहा, जबकि व्यापार घाटा 11.2% बढ़कर 10.98 खरब रुपए और विप्रेषण प्रवाह 37.7% बढ़कर 14.50 खरब रुपए पहुंच गया है। सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान को बजट को जेठ 15 गते दोपहर 4 बजे संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत करेगी। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने जानकारी दी कि जेठ 15 गते दोपहर 4 बजे संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले सरकार का आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बजट प्रस्तुत होने से पहले ही 3:45 बजे तक बैठक कक्ष में उपस्थित होने का सांसदों से आग्रह किया। इसी दिन अर्थमंत्री डॉ वागले आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट दोनों सदनों की अलग अलग बैठक में भी पेश करेंगे। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न चलचित्र विधेयक 2082 को सर्वसम्मति से पारित किया है। राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न चलचित्र विधेयक 2082 पर हुई चर्चा में उठे प्रश्नों का जवाब देते हुए सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा कि पर्याप्त चर्चा के बाद विधेयक को मजबूत और समयानुकूल बनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पिछली सरकार द्वारा लाया गया था और राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न हुआ था, इसलिए वर्तमान सरकार ने इसमें कोई नया विषय शामिल नहीं किया है। साथ ही विधेयक पर चर्चा के दौरान उठे विषयों पर सरकार का ध्यान गया है। बैठक में विधेयक पर सैद्धांतिक चर्चा के दौरान सांसदों ने देश के समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने किसानों के लिए समय पर खाद की व्यवस्था, आपदाओं से होने वाले नुकसान में कमी, बढ़ती नशाखोरी की समस्या, बिजली की सहज आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। सांसदों ने कहा कि देश में नशाखोरी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है तथा 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में इसकी प्रवृत्ति अधिक देखी जा रही है, जिस पर समय रहते ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्षा शुरू होने के बावजूद खाद की कमी बनी हुई है और किसानों को आसानी से खाद न मिलने के कारण खेती करने में समस्या हो रही है। सांसदों ने खाद प्रबंधन में राज्य की तैयारी को कमजोर बताया। सांसदों ने देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद गुठी सहित भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान कर सभी नागरिकों के भूमि अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। सांसदों ने निर्माणाधीन संसद भवन में किस देश की लकड़ी का उपयोग किया गया है इस पर प्रश्न उठाते हुए नेपाली लकड़ी के उपयोग को बढ़ावा देने तथा संसद भवन और सिंह दरबार में केवल नेपाली लकड़ी के उपयोग की व्यवस्था करने की मांग की। सांसदों ने वर्षा ऋतु शुरू होने के मद्देनजर संभावित आपदा जोखिम से देश भर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूर्व तैयारी करने की भी सरकार से मांग की। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक का भी श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हरकराज राय ने बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सभामुख कार्याल ने प्रधानमंत्री बालेन शाह को संसद में उपस्थित कराने के लिए रूलिंग नहीं की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक 15 गते शुक्रवार शाम 5:30 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक 2083 तथा मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक 2083 पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोभिता गौतम द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर सैद्धांतिक चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 15 गते शाम 5:45 बजे बुलाई गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गत भाद्र 23 और 24 गते हुए जेएनजी आंदोलन के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित घटनाओं पर तैयार अपनी जांच प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के लिए आज नेपाल सरकार को पत्र भेजा है। आयोग के प्रवक्ता डॉ टीकाराम पोखरेल के अनुसार घटनाओं में मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून बनाकर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। आयोग की सिफारिश में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमंत्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सूचना तथा संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग को भी मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता मानते हुए नया कानून बनाकर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है। प्रतिवेदन में उस समय नखु कारागार में रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के जेल से बाहर आने की घटना से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ आगे की जांच करने की सिफारिश भी की गई है। इसी प्रकार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी के वरिष्ठ अधिकारियों तथा काठमांडू उपत्यका के तत्कालीन प्रशासनिक और सुरक्षा निकायों के अधिकारियों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की सिफारिश प्रतिवेदन में की गई है। आंदोलन से पहले और प्रदर्शन के बाद अभिव्यक्ति देने वाले अभियंताओं और संबद्ध व्यक्तियों गणेश कार्की, सुलभ खरेल, असीम मान बसनेत, भाग्य न्योपाने, टंक दहाल, विक्टर पौडेल सहित अन्य के बारे में भी जांच करने की बात प्रतिवेदन में कही गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि सतत हिमालय पर्यटन, जिम्मेदार पर्वतारोहण तथा हिमालयी पर्वतारोहण का संरक्षण आज की आवश्यकता है। आज काठमांडू में विश्व के विभिन्न देशों से आए एवरेस्ट पर्वत आरोहियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और पर्वतारोहण क्षेत्रों में कचरा जमा होने जैसी समस्याएं वर्तमान समय की बड़ी चुनौतियां बन गई हैं। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केंद्र के दक्षिण पूर्व एशिया तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि किशोर बाबू एरा बल्ला के बीच आज शिष्टाचार भेंटवार्ता हुई। भेंट के दौरान नेपाल की डिजिटल प्राथमिकताएं, समावेशी कनेक्टिविटी तथा सतत और सुलभ सूचना प्रविधि विकास सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेकर आज स्वदेश लौट आई हैं। वहीं जेट 3 गते 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए इस सभा में भाग लेने के लिए गई थी। मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉ समीर कुमार अधिकारी के अनुसार सभा ने मंत्री मेहता को उपाध्यक्ष के रूप में नामित निर्वाचित किया है, जो नेपाल की स्वास्थ्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ती उपस्थिति के लिए एक बड़ी उपलब्धि और सम्मान माना जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरते। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद में प्रस्तुत। नेपाल की अर्थव्यवस्था के 3.85% विस्तार का अनुमान। देश के आर्थिक और सामाजिक सूचकों में सुधार हुआ है, अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले का कथन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेएनजी आंदोलन संबंधी जांच प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के लिए सरकार को भेजा पत्र। और भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।